कोई प्रश्न है क्या किसी का? नहीं नहीं प्रश्न कोई भी हो सकता है किसी भी चीज से, क्योंकि सब कुछ सब चीज से जुड़ा हुआ है और सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है। एक बड़ी अद्भुत बात श्री अरविंद के बृहत दर्शन में आती है कि कोई भी चीज वस्तुतः भगवान से अलग नहीं है, और उन्होंने हर चीज में भगवान के प्रकाश से, सिर्फ हमारी दृष्टि की सीमा है, हमारी दृष्टि की सीमा भगवान की सृष्टि की सीमा नहीं है, और अगर दृष्टि बदल जाए तो बहुत कुछ बदलता है। हालांकि दृष्टि बदलना ही न्यू क्रिएशन नहीं है, माता जी ये स्पष्ट करती है, किंतु कम से कम बहुत कुछ बदल जाता है। बहुत सारी चीजें जो विकट समस्या दिख रही थी वो वास्तव में समस्या होती नहीं है, वो हमने स्वयं ईगो दृष्टि के कारण उनको उलझा लिया होता है, उलझने होती हैं, और वो उलझने चूंकि हमारे अंदर से क्रिएट हुई हैं इसलिए उनको कोई और सुलझा नहीं सकता है, उन्हें हमें ही सुलझाना होता है। माता जी एक स्टोरी बताती हैं एक महात्मा की, जो एक बार माता जी के पास आया, कहता है कि मैं बड़ा परेशान हूं। किससे परेशान हूं? कहते हैं ये एक महात्मा आते हैं और मुझे हर समय कहते रहते हैं ये सही है ये गलत है ऐसा कर वैसा कर, मैं बहुत परेशान हूं इससे, मैं इतना दुखी हो गया हूं कि अब उनसे कहता हूं तुम चले जाओ, जाते नहीं। तो माता जी कहती ये आते नहीं है, तुमने ही अपने अंदर से इनको फॉर्मेशन दे दिया है, तो ये जाएंगे कहां? ये तो जाएंगे तो तुम्हारे अंदर ही जाके विलीन होंगे, तो ये कहीं और नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हारा फॉर्मेशन है तो तुमसे अटैच्ड है, तो यू हैव टू डिसॉल्व इट। तो ये एक सोच नहीं, मनोवृत्ति भी नहीं, एक दृष्टि है जो हमें प्राप्त करनी है। हम लोग अभी द्युमत सेन की तरह अंधे हैं, इसलिए जो सत्य होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो सत्य होता नहीं। जैसे बात हो रही थी मानव एकता एक सत्य है, दिखता नहीं, दिखता सब अलग अलग दिखता है, तो वो क्यों अलग अलग दिखता है? क्योंकि हमने चीजों को इतने बांट करके जीते हैं, और फिर भी चूंकि संपूर्णता सत्य है वो उसी ओर धकेलती है। जैसी बात हो रही थी सती की कहानी में कि आप केवल सती की आंख या सती की कोहनी या सती के पांव लेकर आप नहीं करते, यू हैव टू कंस्टिट्यूट द फुल थिंग। हर चीज का अपना स्थान है, हर व्यक्ति का अपना स्थान है, और अगर हम उस चीज से उसको काट दें तो वो अपने आप सृष्टि में संपूर्णता नहीं आएगी। हर चीज की अपनी एक महत्ता है, अपनी एक जगह है, यहां तक कि हर विचारधारा का, ये नास्तिकता का भी एक सत्य है, श्री अरविंद लाइफ डिवाइन में बताते हैं। और हम किसी चीज को अगर क्रिएशन से हटा देते हैं, माँ कहती है, लोग ये कहते हैं ना ये क्रिएशन में ना हो, एलिमेंट हट जाए, तो माँ कहती है ऐसे संभव नहीं है क्योंकि उसकी अपनी एक जगह है। तो फिर ईविल कहां से आता है? ईविल आता है इस बात से कि वो अपनी जगह पर नहीं है, उसकी जगह है लेकिन वो अपनी जगह पर नहीं है, कहीं और है। वहां होता है तो फिर समस्या शुरू होती है। आपको छोटी सी उदाहरण देता हूं, अभी हाल में हुआ और अक्सर होता है, तो इसको लेट मी मेक इट लिटिल इम्पर्सनल। लोग जाते हैं और ताला नहीं लगाएंगे, घर खुला छोड़ देंगे, नहीं 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 हम माता जी पर पूरा भरोसा करते हैं। अब देखिए इसमें समस्या क्या हो रही है, आपसे कहा गया भगवान पर भरोसा करो, ये एक बहुत बड़ा सत्य है, आपने इसको इलेजिटिमेटली ट्रांसफर कर दिया कि मनुष्य में भगवान है तो मैं मनुष्य पर भरोसा कर रहा हूं, हालांकि मनुष्य में भगवान है ये दिख भी नहीं रहा, शायद दिखे तो वो चरितार्थ भी हो जाए, कि मैं मनुष्य पर भरोसा कर रहा हूं। तो आप भरोसा माता जी पर कर रहे हो या मनुष्य पर कर रहे हो, पहले तो ये डिसाइड करना है। दूसरी बात है आप चाहते हो कि माता जी और कुछ नहीं सामान की देखभाल करें, अब आपकी अब करेंगी वो अगर आप रियली ऐसी श्रद्धा कर रखेंगे तो। बट हम क्यों जीवन को कॉम्प्लिकेट करते हैं अननेसेसरी, एक छोटी सी चीज है इसमें कोई। तो इसी को कहा गया हमारे वेदों में रित, रित इज ट्रुथ में, हर चीज के अंदर एक ट्रुथ है और वही हम देखते हैं पुरुष सूक्त में, हर चीज का अपना एक ट्रुथ है और उसका एक स्थान है। पुरुष सूक्त में यह भी कहा जा सकता था कि ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र सब मेरे अंदर से निकले, वो भी तो ट्रुथ था, वो ट्रुथ है, लेकिन इतने डिटेल में जाने की क्या जरूरत थी। अब देखिए उसके पीछे ट्रुथ क्या है, वो कैसे डिस्टॉर्ट होता है मानव चेतना में। ट्रुथ यह है कि मनुष्य का जीवन का प्रारंभ भौतिक दृष्टि से होता है और जब तक हमारी दृष्टि स्थूल है, भौतिक है, उसको सूक्ष्म बनाने के लिए सबसे सुंदर माध्यम होता है सेवा। शूद्रत्व का यह ट्रुथ है। जब हम सेवा के रूप में जीवन को देखते हैं तो हमारी शरीर की तो वो पूजा है ही, माने इसीलिए कहा है कि इट्स यू नो प्रेयर ऑफ द बॉडी, और धीरे धीरे हमारी चेतना सूक्ष्म होने लगती है, ऊपर उठने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रुथ क्या प्रकट होता है, परस्परता का ट्रुथ। वैश्य कौन है जो चीजों को जोड़ता है, एक्चुअली ही यूनाइट्स थिंग्स इन ए बाय द वे ऑफ फॉलोइंग द लॉ ऑफ कॉन्शियस इंटरचेंज। ओरिजिनल वैश्य क्या है, वो उसने यहां से ये सामान खरीदा, वहां बेचा, वहां से ले जाके यहां किया, तो उसने क्या किया, माध्यम बन गया चीजों को जोड़ने का। इन द प्रोसेस उसने धन भी कमाया क्योंकि उसको देखभाल करना है अपने घर का। वो केवल धन के लिए नहीं काम कर रहा है, वो काम कर रहा है बिना जाने, जैसे मधुमक्खियां होती है ना, यहां से लिया वहां डाला, ये काम वैश्य करते हैं, वे चीजों को जोड़ते हैं। क्षत्रिय कौन है, इसके जब हम इस तरह से जोड़कर चीजों को आगे बढ़ते हैं, ना केवल धोखाधड़ी करके कैसे भी धन कमाओ, वो वैश्य नहीं, वो तो चोर है, चाहे वो ब्राह्मण हो शूद्र हो, दैट इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ इट। जब हम इससे आगे और बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस सृष्टि के अंदर एक प्रकाश और अंधकार का खेल चल रहा है, और क्षत्रिय वो भाग है, वो भाव है जिसमें हम प्रकाश का पक्ष लेते हैं और अंधकार के विरुद्ध लड़ते हैं, चाहे वो हमारे अंदर हो या बाहर हो, समाज में हो या हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो। और उसका नेक्स्ट स्टेप होता है उसी अवस्था में, जब ये सब करके हम तैयार होते पकते हैं, तब हम ज्ञान के अधिकारी होते हैं, तो ब्राह्मण यानी ब्राह्मण तत्व जाग जाता है जो ज्ञान की ओर मुड़ने लगता है। जब हमने ये सब स्टेप्स किए हैं, केवल पांडे मिश्रा शर्मा से तो ब्राह्मण नहीं होता है व्यक्ति, तो वही है, भ्रम का जीवन है। डिस्टॉर्शन कैसे होता है, इसका डिस्टॉर्शन इस तरह से होता है कि आदमी ईगो से, हम ब्राह्मण हैं हमारी पूजा करो, हम तो प्रीस्ट हैं, पंडित हैं, पंडित है। देखिए ईगो आई, उसने एक इतने महान ट्रुथ को, जो समाज की व्यवस्था थी सात्विक समाज की, उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि ब्राह्मण तप करके ज्ञान अर्जन करेगा। क्यों वो करेगा, ये काम हर कोई नहीं कर सकता, बड़ा कठिन कार्य था ये, क्योंकि हर व्यक्ति तप नहीं कर सकता, हर व्यक्ति इस तरह से अपने अंदर जाकर के, उसका काम केवल ये था और उसका जीवन बड़ा कठिन जीवन था, उसको धन कमाने की मनाही थी, धन नहीं कमाएगा, उसकी नीड्स मिनिमम रहेंगी, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करेगा, ये सब ब्राह्मण के लिए नियम थे, ये नियम क्षत्रिय के लिए नहीं थे। और वो जो ज्ञान प्राप्त करेगा उसको सब में वितरित करेगा, ये उसका दान होता था। तो इन रिटर्न समाज का दायित्व था। अभी हम एक आदर्श समाज, सात्विक समाज की बात कर रहे हैं, जिनके अंदर क्षत्रियत्व था वो उसकी रक्षा करते थे, जिनके अंदर वैश्य का भाव प्रकट था वो उस ब्राह्मण को उसके भरण पोषण, क्योंकि अगर वो पैसे के लिए काम नहीं करेगा तो उसका धन कहीं से तो आएगा देखभाल के लिए, तो ही वॉज लिविंग बाई दान। लेकिन पहले वो दान करता था, अपने तप से मिले प्रसाद को दान करता था, जो सबसे उच्च कोटि का दान माना गया। उस दान के रिटर्न में, क्योंकि वो मिल रहा है बिना तप किए वैश्य को, शूद्र को, क्षत्रिय को, ये दान मिल रहा है, तो वे अपना अपना योगदान उसके यज्ञ में देते थे और फिर से चारों जुड़ जाते थे। शूद्र ब्राह्मण के यहां कोई कार्य करना है तो यूं ही करेगा, अच्छे उससे भाव से करेगा। ये कितना एक सूक्ष्म सत्य है और ये अभी भी लागू होता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट. और देखिए डिस्टॉर्शन कैसे होते हैं. ये एक बड़ा सुंदर बौद्ध भिक्षु थाईलैंड में तो सुबह सुबह निकल करके जाते हैं बोलते हुए भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही. इसके पीछे भी एक सत्य है. सत्य क्या है कि जो वो गीता में बात होती है ना, कल बात भी हो रही थी शायद उसकी, उसके कई अर्थ हैं. खैर अनिकेत निराश्रय, तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान की ओर तपोनिष्ठ होता है वो किसी चीज को पजिस्ट नहीं कर सकता. उसको उसको ये प्रैक्टिस करना है अपनी लाइफ में, और उसको अपनी नीड्स के लिए भगवान के ऊपर छोड़ देना है कि जो आवश्यक होगा भगवान देंगे. वो किसी से कह नहीं सकता कि मैं मुझे ये चाहिए आप ला करके दे दो. तो वो भिक्षा हुई बाहर से देखने में, लेकिन अंदर में उसके अंदर ये विश्वास है कि वो अपनी नीड्स के लिए भगवान पे आश्रित है. विवेकानंद का सुंदर उदाहरण है कि जो चीज की जरूरत होती थी भोजन की, इसकी आ जाता था उनके पास. तो ये एक रियलिटी है इनर लाइफ की, आज भी ये रियलिटी है. अगर कोई व्यक्ति सच में इस भाव से जीने लगे कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, जो मेरे लिए आवश्यक होगा भगवान देंगे, आएगा आवश्यकता से कहीं अधिक आएगा, बिकॉज ही इज यू नो गिव्स लाइक दैट. लेकिन डिस्टॉर्शन इसका क्या होता है कि पंडित लोग कथा करते हैं, वो ज्ञान नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है. इंफॉर्मेशन के आधार पर वो कहते हैं अब देखो ऐसा करना, चढ़ावा कैश में देना, चेक और गिफ्ट में नहीं देना. आई एम टेलिंग यू अ रियल थिंग. एक बार किसी से वो व्यासपीठ की बात कर रहे थे, सब व्यासपीठ तो अंदर होती है. एक दिन जोरहाट में हम लोग चाय पी रहे थे एक परिवार में, मैं गया था और भी लोग थे काजीरंगा घूमने जाने के लिए. तो सुबह चाय पीते पीते द लेडी ऑफ द हाउस उनसे भागवत, उन्होंने ऐसे ही प्रश्न किया कि अच्छा भागवत के बारे में कुछ आप कहेंगे. तो बड़ा आनंद आ गया, दो घंटे भागवत पे आई स्टार्टेड स्पीकिंग ऑल द इनसाइट्स ऑफ भागवत. बाद में कहती है हमारे यहाँ तो हर साल हम लोग भागवत सप्ताह करते हैं, पंडित जी ये सब बात बताते नहीं. तो मैंने कहा आप उनको क्या देते हैं? बोले वो तो 1,00,000 रुपया तो कम से कम. और वो ऐसा आजकल बोलने लगे हैं कि देखो हमें ये सब मत देना जो आप जो देते हो, ये चीज वो चीज, क्योंकि वो सब तो अब हो गई है. और चेक भी मत देना क्योंकि इनकम टैक्स वाले करते हैं, तो कैश देना. मैंने उनको सोल्यूशन दिया. मैंने कहा देखिए आप ऐसा करिए, उनको आगे से ये सब मत दीजिए, आप उनको चाय पर बुलाइए. चाय पर चर्चा. और जब चाय से आप संतुष्ट हो जाएं तब आप आगे की बात करिए. आप तो सीधा वो उसने भेज धर लिया, गेरुआ वस्त्र पहन लिया, माथे पर त्रिपुण लगा लिया, ब्राह्मण समझने लगे, चार मंत्र पढ़ लिए. तो ब्राह्मण नहीं हुआ, ये तो इंफॉर्मेशन हुई. सो यू हैव स्पॉइल्ड देम. एक्चुअली आपने उनको स्पॉइल किया. आपको लगा कि आप पुण्य का काम कर रहे हो, क्योंकि पुराने समय में यह माना जाता था. आप पुण्य क्या होता था भाई, सबने मिलकर ब्राह्मण को दिया, बदले में क्या लिया, ज्ञान लिया. तो ये पुण्य अर्जित किया आपने इन, और कौन सा ज्ञान जो आपको फ्री करता है, मुक्त करता है. लेकिन अभी तो आप उल्टा कर रहे हो, उसको भी बांध रहे हो, खुद को भी बांध रहे हो, और एक ईविल का कारण बन रहे हो. तो वो जो बात हुई कि थिंग्स आर नॉट इन देयर प्लेस. वो ब्राह्मण एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता था, उसको साइकोलॉजी आती है ह्यूमन नेचर की. और जैसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं आपको वो बातें बोलेंगे जो आपके जीवन में बड़ा कष्ट और संघर्ष है. किसके जीवन में नहीं आ रही, ये तो जानता है मेरे बारे में. ऑब्वियसली इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ. उसके बाद बोलेंगे 2 साल का समय है, फिर आप निकल आओगे. अच्छा तो बहुत अच्छी बात. तो फिर वो कहेगा वैसे एक उपाय है, ये करने से शायद 6 महीने में आप निकल आओ. अब देखिए क्या इतना वंडरफुल साइकोलॉजिस्ट है, कौन नहीं चाहेगा कि अच्छा क्या उपाय है. तो ज्यादा कुछ नहीं वो बताएगा कि थोड़ी बहुत पूजा कर लीजिए और 1,001 अपना, माने जो अच्छे जो हाईटेक होंगे, जो अंबानी परिवार में जाएंगे वो 1 करोड़ मांगेंगे. दिस द ओनली डिफरेंस, बट द सेम लॉजिक इज अप्लाइड. अब दैट मैन वुड हैव बीन वेरी गुड जहां पर इस तरह की क्लेवरनेस, श्री कृष्ण कहते हैं ना चतुरों की चतुराई भी मैं हूं, की जरूरत है. लेकिन वो गलत जगह है, तो ईविल है. क्योंकि वो धोखा दे रहा है, समाज में अज्ञान फैला रहा है और अपने खुद तो अज्ञान में धस रहा है लेकिन समाज में अज्ञान फैलाने का कारण बन रहा है। तो ये व्यवस्था, ये एक सात्विक समाज था जिसमें एक समय ये व्यवस्था ऋषियों ने की थी, क्योंकि वे उस सूक्ष्म सत्य को जानते थे और वो ये भी जानते थे कि आज जो शूद्र है देह बदलकर वो वैश्य के रूप में प्रकट होगा, ये विकास क्रम है। जो वैश्य है वो इवोल्यूशन से नेक्स्ट लेवल क्षत्रिय बनकर प्रकट होगा, जो क्षत्रिय है वो इवोल्यूशन की प्रोसेस के द्वारा ब्राह्मण के रूप में प्रकट होगा, जो ब्राह्मण है वो इवोल्यूशन के द्वारा उसके परे शब्द ब्रह्मति वर्तते उस अवस्था में चले जाएगा। तो ये एक कितना अद्भुत ट्रुथ था जो पुरुष सूक्त से यज्ञ के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन मानव चेतना की बलिहारी, कितने सुंदर सत्य को उसने क्या डिस्टॉर्ट किया है। अब तो खैर शुद्ध ब्राह्मण हो गया, उसका रिएक्शन होता है ना नेचर में, तो हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं नहीं मैं अपना सरनेम बदल लूं, ब्राह्मण नहीं रखूं, कोई ऐसा सरनेम हो कि मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि मुझे अब 50%। अब बिकॉज नेचर का रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन का प्रतिक्रिया, इट्स अ रिएक्शन ऑफ नेचर। आप कर्म और कॉन्सिक्वेंस की जो बात हो रही थी, ये दिस द रिएक्शन, यू कांट हेल्प इट, क्योंकि वो आपने किसी को डिप्रेस किया, ये फैक्ट है कि डिप्रेस किया गया एक पूरी क्लास को, तो रिएक्ट करेगी, प्रकृति रिएक्ट करेगी, और ये रिएक्ट करेगी तो बैलेंस दूसरी दिशा में जाएगा, फिर रीएडजस्ट होगा, क्योंकि ये पेंडुलम है, अल्टीमेटली थिंग्स विल टेंड टुवर्ड्स ए बैलेंस। वो अब तीसरा फेज शुरू हो रहा है। तो एक सत्य और उसके डिस्टॉर्शन, सत्य एक होता है, डिस्टॉर्शन बहुत होते हैं, प्रयास बहुत होते हैं, और ये संकेत हमारी कथाओं में है। सती मां की जो कहानी हम लोगों ने, कितना बड़ा सत्य है और डिस्टॉर्शंस कितने हैं। अरे वहां पर वो शक्ति पीठ है, वहां जाओ ये मन्नत पूरी हो जाएगी, दिस इज डिस्टॉर्शन। इस कहानी का संकेत है कि हर तत्व के अंदर मां का एक तत्व विद्यमान है और आप सबको जब जोड़ेंगे तब संपूर्णता बनेगी। आप ऐसा कर नहीं सकते कि किसी तत्व को बाहर कर दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में कामरूप कामख्या में मां का एक भाग है और नैनीताल में मां का दूसरा भाग है, यू हैव टू कनेक्ट देम। लेकिन डिस्टॉर्शन, अरे वहां सती मां का शक्तिपीठ है, वहां जाके पूजा करो तो कामना पूरी हो जाती है। मां हमें मुक्त कर रही है विशालता की ओर, हम फिर से उसी सीमा में आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये एकता का सत्य और उसका डिस्टॉर्शन, इसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं। एक स्टोरी है टावर ऑफ बैबिल, ये इसमें क्रिश्चियन मिथोलॉजी में स्टोरी है कि एक बार मनुष्यों को ये काम दिया गया कि धरती से स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनाओ। क्या ये वही है ना, मैरिंग द अर्थ टू द सॉइल टू द स्काई, रेनबो ब्रिज, कल जो हम लोग देख रहे थे रेनबो ब्रिज बनाओ। तो अब ब्रिज बनाने के लिए चले गए लोग बनाने के लिए, बहुत अच्छा संकल्प है, कितना अद्भुत है कि धरती से आकाश तक हम लोग एक सीढ़ी बना ले तो चढ़ सकेगा कोई, सीढ़ी एक बार बन गई तो कोई हर कोई उसका उपयोग करेगा। तो डेविल ने कहा ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, सब धरती के वासी स्वर्गवासी हो जाएंगे गुड सेंस में, और स्वर्ग के लोग आराम से धरती पर आ जाएंगे, मेरा काम तो सब समाप्त हो जाएगा, मैं क्या करूं क्या करूं। प्रेरणा मिल गई, ईट सीमेंट सब इकट्ठा हो गया और खुदाई हो गई, शुरू हो गया टावर। अब डेविल को समझ नहीं आ रहा करूं क्या करूं क्या। तो देखिए वो देखता है कि मनुष्यों की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, सबसे बड़ी शक्ति हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है और सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। ये भी एक सूत्र है, जैसे वो सूत्र हुआ ना प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस को एग्जिस्ट, इस सूत्र पर कभी और हम लोग विचार करेंगे, विचार कीजिएगा, बहुत सुंदर सूत्र है। सबसे बड़ी शक्ति हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन को एग्जिस्ट। तो उसने देखा मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, वाणी पशुओं में नहीं है मनुष्य में है। कहता अच्छा, वाणी क्या करती है, ब्रिज दो लोगों के बीच में, शायद वो एक दूसरे के साइलेंस को नहीं समझ सके इसलिए वाणी दी गई है ताकि वो एक दूसरे को समझा सके। कहा यहीं पर मैं एक्ट करूंगा, यही उसकी कमजोरी बनेगी। तो कुछ ऐसा करता है कि काम करने वाले मान लीजिए 100 लोग हैं, एक जो कहता है दूसरा नहीं समझ पाता, दूसरा जो कहता है तीसरा नहीं समझ पाता, ऐसा कंफ्यूजन होता है, ऐसा कंफ्यूजन होता है कि वे आपस में झगड़ने लगते हैं, ठीक श्री अरबिंदो सोसाइटी सेंटर्स की तरह। टावर ऑफ बैबिल है ना, हम लोग यही तो बनाने गए। अंत क्या होता है, टावर तो टावर आपस में एक दूसरे का खून करने को उत्सुक है। श्री अरविंद इस कहानी के बारे में लिखते हैं, कहते हैं इट इज लाइक ए टावर ऑफ बैबिल इन रिवर्स। उसको कहानी को दूसरा रूप देते हैं। ये श्री अरविंद की ब्यूटी है कि हर कठिनाई में वो एक सॉल्यूशन देख रहे हैं। कहते ये प्रारंभ है, क्या वह बच्चा जिसने बोलना नहीं सीखा कभी भी नहीं बोल पाएगा? सावित्री में पंक्तियां हैं जब मृत्यु कहती है सावित्री को, ये मनुष्यता, तुम इसके अंदर दिव्यत्व का बीज ला रही हो, ये तो आपस में झगड़ के मर रहा है। तो सावित्री यही उत्तर देती हैं, बड़ा सुंदर है, इफ इन द मीनिंगलेस वाइड क्रिएशन रोज एंड लाइफ कुड वेक इन ट्री एंड प्लांट, इफ थॉट कुड लीप फ्रॉम द ग्रेन मैटर ऑफ द ब्रेन, ये सब कुछ संभव हो गया तो क्यों ऐसा नहीं होगा कि मनुष्य एक समय आएगा जब उसकी वाणी स्पष्ट क्लैरिटी से सत्य को प्रकट करेगी, और यही प्रयास होते होते एक दिन टावर ऑफ बैबिल संपूर्ण होगा। देखिए डिवीजन यही जो चीज ब्रिज करती है, डिवाइड भी करती है, यही एक सूत्र कितना सुंदर है। हम लोग यूनिटी की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है यूनिटी का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल, स्पीच पर संयम। यूनिटी से कैसे आएगी, देखिए चुप रहिए, देखिए कितने झगड़े बच जाएंगे। उसका नेक्स्ट स्टेप आता है, स्पीच पर संयम पहला है, फिर आता है वाणी में शुद्धता शुचिता। गीता में क्या शब्द यूज हुआ है, वाणी का यज्ञ तप। ये कैसा तप है, तप से तो हम लोग सोचते थे गिरवा पहन लिया जंगल चला गया कमंडलू लेके, ये कैसा तप है, वाणी का भी तप होता है। वाणी के तप को कहा गया सत्यम वदम प्रियम वदम, सत्य भी कहो लेकिन सत्य जो सुंदर है। ये देखिए सत्य जो हार्श, जिसको लोग कहते हैं ना हार्श बेयर रियलिटीज ऑफ लाइफ, ये डेथ कहती है। सत्य मालूम है कैसा होता है, बड़ा कठोर होता है, वो भी एक एकत्व है। मृत्यु कहती है राजा रंग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब एक हैं, मृत्यु की गोद में एक है, ये सत्य नहीं है। इट इज ए हार्श बेयर डार्क ट्रूथ, उसी सत्य का इन्वर्शन है। सत्य कैसा है, प्रिय है, आनंद में है, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, सच्चिदानंद है। वेदों में जिनकी जिनको नेति नेति कहा गया, उसी को उन्होंने इति इति के रूप में धारण किया है, किंतु वो कैसा सत्य है, आनंद में है, माधुर्य। असितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम चरितम मधुरम। इसीलिए सत्य जब हम उसके माधुर्य से हटा देते हैं, माँ कहती है ट्रूथ इज सुप्रीम हार्मनी एंड डिलाइट, एक जगह माँ ट्रूथ को ऐसे डिफाइन करती है। आप सत्य से इसको हटा दीजिए, देखिए क्या बनेगा। अभी हम जो आइसिल अगेन इस्लामिक स्टेट, आपको शायद पता हो ना पता हो, इस्लाम के प्रारंभ में कैसे सत्य डिस्टॉर्ट होता रहा। वे भी कहते हैं सब एक है, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड की बात बहुत सुंदर बात है, अगर आप कुछ चीजें पढ़ो तो बहुत सुंदर है। सब मनुष्य एक हैं और भगवान अल्लाह तो वहां है, ये सब जो चीजें हैं ये हमको भटकाती हैं। ये दीन है वो दुनिया है, चुनाव कर लो। अब ये देखिए ये सत्य कैसे डिस्टॉर्ट होता रहा। आगे चलकर ये हुआ कि गीत संगीत चित्र इत्यादि सब कुछ बैन हो जाने चाहिए, क्यों, क्योंकि वो भटकाते हैं। सत्य क्या है, एक काला पत्थर का प्रतीक, वो सत्य का प्रतीक है, हार्श है, बेयर है, कोल्ड है, इम्पर्सनल है, उस पर आप पत्थर मारो जो करो कोई प्रतिक्रिया नहीं, ट्रूथ इज लाइक दैट. अब वो हार्शनेस जब ट्रूथ में व्यक्ति ने देखा तो अपने अंदर क्या वो पोषित करने लगा, हार्शनेस हार्शनेस हार्शनेस. ब्रदरहुड क्या हुआ, केवल मेरे धर्म के अनुयायी तो मेरे भाई हैं, उसमें भी झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन बाकी जो है वो कैसे भाई हो सकते हैं. जैसे कई बार वही चीज होती है सब जगह, मत, ये तो हमारे मत के लोग हैं, हमारे धर्म के लोग हैं, वो दूसरे लोग हैं. तो कैसे एक सत्य डिस्टॉर्ट होता है मानव चेतना में, और माध्यम क्या बनती है, वही भगवान की वाणी कोट करते हैं, पंडित भी कोट करते हैं, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी कोट करते हैं. श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं एफोरिज्म में, द वर्ड ऑफ द स्क्रिप्चर इज ट्रू बट द प्रॉब्लम लाइज इन अवर अंडरस्टैंडिंग. जो लिखा है वो सच लिखा है, लेकिन हम उसको समझते हैं वहीं भूल करते हैं. कैसे समझते हैं, ईगो से पढ़ते हैं तो ईगो के हिसाब से समझते हैं, कंटेक्स्ट नहीं रहता, उसका सूक्ष्म सत्य निकल जाता है. हमारी वाणी भी फिर वही काम करती है, ईगो से जन्मी वाणी डिवीजन ही करेगी. देखिए अगेन हमारे शास्त्रों में इसका बड़ा सुंदर, ईगो से जन्मी वाणी का प्रभाव, ईगो से जन्मी वाणी. बहुत बार लोग फ्लैटर करते हैं, आप कितने अच्छे हो, अरे बहुत अच्छे हो, क्यों उनको काम लेना है. अब इसको कहते हैं इंग्लिश में पासिंग ऑफ ए हैट, यानी टोपी दे देना, टोपी पहना देना. वही ओरिजिनल इंग्लिश है, पासिंग ऑफ द हैट, टोपी पहना दी. टोपी पहनाना क्या होता है, अरे आप तो बहुत अच्छे हो. अरे अब उसको पता है वो व्यक्ति धीरे धीरे उसके नशे के प्रभाव में आ रहा है, ये सब कह के अच्छा बस थोड़ा सा मेरा काम है, हाँ हाँ लाइए लाइए आपका काम फट से हो जाएगा, साइन हो गया. तो ये इसको कहते हैं टोपी पहनाना. उसमें आपने अच्छी बातें बोली, प्रिय बोली, लेकिन सत्य नहीं बोली. हुआ क्या, दूसरे का बहुत बड़ा अपकार हुआ, वो ये भ्रम में रहने लगा कि मैं बहुत अच्छा हूं. पहली बार उसको सत्य उसकी पत्नी ने बोला, आप बहुत अच्छे नहीं हो, ये ऑफिस का भ्रम ऑफिस में रखो, मैं जानती हूं आप कैसे हो, घर में एक कप चाय तो बना नहीं सकते. तो उसका वो कोलैप्स हुआ, उसने अच्छी बात बोली थी, एक चांस था उसकी प्रोग्रेस का. देखिए ये हुआ ईगो में कही गई बात और उसका असर. अब दूसरा एक जो कल बात हुई थी, ऋषि जो सत्य में जीते हैं, सत्य कहते हैं, ये तप करते हैं, जब वो श्राप भी देते हैं तो वरदान बन जाता है. जितने भी श्राप हैं, देखिए भागवत कथा का जन्म कहां से होता है, एटलीस्ट जिस रूप में मिली है, नॉट ओरिजिनल सूत सौनक संवाद से, जिस रूप में हमें मिली है उसका जन्म एक श्राप से होता है. किसको श्राप मिलता है, परीक्षित को, और वह श्राप माध्यम बन जाती है, उसके अंदर मृत्यु, सात दिन मैं क्या करूं क्या करूं, तो माध्यम बन जाती है एक वरदान का. सगर के पुत्र कपिल मुनि भस्म कर देते हैं, माध्यम बन जाती है सबके लिए गंगा के अवतरण का. ये जब सत्य में व्यक्ति जीता है तो वही वाणी कितना सुंदर माध्यम बनती है विकास का. एक बार आश्रम की घटना है, किसी कोई बात हुई जिसमें किसकी गलती, इसकी गलती, उसकी गलती, ये सब चल रहा था. माताजी के पास बात गई तो माताजी ने एक व्यक्ति को कहा, नो नो यू शुड लीव द आश्रम एंड गो अवे. तो उसको बहुत खराब लगा, उसको लगा मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे क्यों कहा माँ ने ऐसा. वो उसको ये कन्विंस था कि उसकी गलती नहीं थी, और बाकी जो लोग थे उनके हिसाब से भी उसकी गलती नहीं थी. तो वो नलनीदा के पास गया कि मैं क्या करूं, मेरी तो गलती नहीं है, माँ ने मुझे ऐसा कह दिया. तो नलनीदा ने उनको बड़ा सुंदर मंत्र दिया. नलनीदा ने कहा, इफ मदर सेज समथिंग टेक इट एज ए ग्रेस. तो उन्होंने कहा ठीक है, समर्पण भाव से उन्होंने आश्रम छोड़ के चले गए. कई वर्षों के आते जाते रहे, कई वर्षों के अंतराल के बाद 10 वर्ष बाद वो कहते हैं नलनीदा को कि इतनी बड़ी कृपा का वो मुहूर्त था, और यदि मैंने उसको कृपा के रूप में नहीं लिया होता आपके कहने पर, तो मैंने बहुत बड़ी प्रोग्रेस का एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी होती। और मदर माँ ये कहती है, मदर ये कहती है कई जगह, एक जगह तो एजेंडा में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ट्रूथ विजन में जब आदमी जीता है और जब वो कुछ कहता है करता है तो बाहर की दृष्टि में वो कई बार हो सकता है ऐसा लगे कि नहीं वो जस्टिस नहीं है, लेकिन डिवाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ग्रेस होती है। और मां कहती है मेरे सामने स्पष्ट विजन होता है कि ये इस बात से क्या होने वाला है भविष्य पूरा, लेकिन वो व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो मां उनके प्राइवेट नोट्स में है कि बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, एक्चुअली कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि वो उस मोमेंट में जी रहा है। सो ट्रूथ जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जहां जो भूमि है, जहां एकत्व है, उसको हम ह्यूमन लेवल पे कितना डिस्टॉर्टेड होता है। जैसे एक डिस्टॉर्शन होता है, सीएविन बताते हैं वो सारे डिस्टॉर्शंस, एसोसिएशंस, हम सोचते हैं कि हम लोग मिलकर के पिकनिक चले जाएंगे तो परस्परता बढ़ेगी, हम एकत्व आएगा। नाउ दिस इज ए डिस्टॉर्शन, ऐसा नहीं है। कितने तरीके मनुष्य अपनाता है लेकिन फिर भी वो कोलैप्स कर जाता है। और अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे श्री अरविंद के ऐसे ही उसका एक वर्णन। मैं तो स्टार्ट किया था प्रश्न से, प्रश्न ही उत्तर, उत्तर ही प्रश्न अक्सर, क्योंकि ये चीज ऑरोविल में भी आती है। ऑरोविल का जब जन्म हुआ, जन्म तो उसकी बहुत लंबी कहानी है वो, लेकिन 65 वैसे नेक्स्ट ईयर ऑरोविल की, या बस कमिंग ईयर ऑरोविल की एक प्रकार से कंसेप्शन की स्वर्ण जयंती है। इन द सेंस माँ पहली बार 65 में कहती हैं सतप्रेम को ऑरोविल के बारे में, कहती हैं हैव यू हर्ड, हैव आई टोल्ड यू अबाउट ऑरोविल। तो जो रिटन डॉक्यूमेंट में स्पोकन एंड वो पहली बार आता है, उसके पहले माँ ने हिंट दिए हैं और उसमें वो बताती हैं कि कब कब ऑरोविल के कंसेप्शन हुआ। हैव आई टोल्ड यू अबाउट ऑरोविल, वहां से शुरू होता है और फिर ऑरोविल बनता है और टावर ऑफ बैबिल की कहानी से प्रारंभ होता है। आपस में इतना भयानक झगड़ा होता है, यानी ऐसा झगड़ा होता है कि इंसान कल्पना नहीं कर सकता है, खून खराबे तक जाने वाला झगड़ा। तो आप सोच सकते हैं भगवान, यहां तक कि जब ऑरोविल की बात करती मां तो प्रणवदा कहते मां मैं जानता हूं आप डिवाइन हो, लेकिन ये चीज आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। मां कुछ नहीं कहती है, मुस्कुराती है, वो जानती है उनका जो स्टैंड पॉइंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो जानती है, लेकिन वो तो एक लंबे खेल के खिलाड़ी है भगवान। तो चुप रहती है, कुछ कहती नहीं कि नहीं तुम क्या कह रहे हो, तुम गलत कह रहे हो, वो जानती है कि इसमें क्या कठिनाई होने वाली है। प्रारंभ कैसे होता है, झगड़े से होता है। और मां कहती है कैसे ये, फिर लोग मां ये क्या हो रहा है, क्या होगा क्या होगा, मां कहती है सब ठीक होगा, हमें क्या करना है इसके लिए। मां कहती है मातृ मंदिर बनाओ। ये कोई सोल्यूशन है? माँ को तो ऐसे कहना चाहिए बैठो आपस में बैठ के बात करो, सुलझाओ, तुम लोग कैसे मनुष्य हो, पशुओं की तरह लड़ जाओ। माँ ये नहीं कहती है, माँ कहती है फर्स्ट बिल्ड द मातृ मंदिर, इट इज अर्जेंट। मातृ मंदिर आएगा तो ऑरोविल की सोल मैनिफेस्ट होगी, सोल मैनिफेस्ट होगी तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू होगी। 40 वर्ष लगे मातृ मंदिर बना, एंड एक्चुअली उसके बाद प्रॉब्लम्स सब रिजोल्यूशन की तरफ जा रही हैं अभी भी, लेकिन वो जो चीज थी वो एकदम जैसे कोई चीज उसको समाप्त कर रही है। तो जो सुबह बात हो रही थी, वी हैव टू वर्क फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, आउटवर्ड सॉल्यूशंस काम नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज होती है अपने ही आत्म तत्व को पाना, धरती में हर चीज के पीछे छिपे आत्म तत्व को जानना, इट इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप। और जब तक हम वो नहीं कर पाते तब तक जितने भी हम मानवीय प्रयास करेंगे कि समाज अच्छा हो, सुगठित हो, सुंदर हो, अरे कितना अच्छा हो, लोग कहते ना एक कुछ समय पहले नारा भी लगा था भाईचारा, एक फेमस सॉन्ग भी है, क्या गाना मैं भूल गया, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, बहुत अच्छी बात है। आप प्रयास करके देख लीजिए, भाई भाई तो लड़ रहे हैं, तो भाईचारा होगा तो भी लड़ाई होगी। भाईचारे का अर्थ तो यही है, भाई भाई से लड़ते हैं ना, तो फिर भाईचारे में भी लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि आपने उस ट्रुथ को समझा। अभिप्सा भी अच्छी है, लेकिन आपने ये नहीं जाना कि वो कैसे मैनिफेस्ट होगा। इंसान, शेरविंद इसको बताते हैं अपने पूरे एक उसमें आलेख में, वो कहते हैं कि ब्रदरहुड इज द की। आप यूनिटी और इक्वालिटी, ये दो चीज तब तक मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जब तक आप ब्रदरहुड, जो विश्व बंधुत्व है, उस चाबी को नहीं पकड़ लेते। आप चाहे सब एक हो जाएं, प्रयास करके देख ले, नहीं होगा। आप चाहे सब समान हो, नहीं होगा। कब होगा? जब ब्रदरहुड की को पकड़ेंगे। और तब वो बताते हैं कि ब्रदरहुड की चाबी क्या है। ब्रदरहुड बहुत बड़ी एक सीक्रेट चीज है। ब्रदरहुड कब होता है? सबसे पहले हम एक ओरिजिन, इस ओर भी कुछ चीजें संकेत कर रही हैं, लोग ढूंढने लगे हैं कि हमारी ओरिजिन क्या है। और सच में आप किसी भी धर्म के मूल में चले जाएं तो ओरिजिन में क्या है? अभिप्सा है। श्री अरविंद इसीलिए डिवाइन लाइफ का प्रारंभ वहीं से करते हैं, किसी रिलीजन से नहीं करते हैं। वेदवाणी, वेदवाणी क्या है? इट इज नॉट ए रिलीजन। वेदवाणी में अभिप्सा है। तो वो स्टार्ट करते हैं डिवाइन लाइफ, नॉस्टिक कम्युनिटी, जो लक्ष्य है श्री अरविंद का, माता जी का, सृष्टि का, भगवान का, कि हम सब एक सुप्रामेंटल कलेक्टिविटी बने। तो स्टार्ट कहां से होता है? नॉस्टिक इंडिविजुअल से। नॉस्टिक इंडिविजुअल की शुरुआत कहां से होती है? ह्यूमन एस्पिरेशन से। और एस्पिरेशन इस रिलीजन में हो, उस रिलीजन में हो, किसी रिलीजन में ना हो, वो तो सबके अंदर कॉमन है। और अगर वो एस्पिरेशन है तो किसी भी धर्म में व्यक्ति हो वो ट्रुथ को पाएगा, या किसी धर्म में ना हो तो भी ट्रुथ को पाएगा। और अगर एस्पिरेशन नहीं है तो वो केवल ढांचा है, वो केवल खिलौना खेल रहा है, असली चीज नहीं है। इसलिए हम देखेंगे श्री अरविंद जोर देते हैं इस पर, एस्पिरेशन। बिना एस्पिरेशन के ना दीक्षा है, ना योग है, ना पथ है, केवल भटकन है। आश्रम में चले गए, रोज सेंटर में आए, ये पढ़ा वो पढ़ा, एस्पिरेशन नहीं है, दिया नहीं जला, अंधकार है। तो कितना भी हम प्रयास कर ले वही रहेगा, क्योंकि दिया नहीं जला, एस्पिरेशन का दिया। एस्पिरेशन का दिया कैसे जले? उसी लिए ये यज्ञ है, जो ये रतलाम में या अन्य जगह स्वाध्याय शिविर होते हैं, इसका अर्थ यही है। आश्रम जाते हैं, श्री अरविंद की पुस्तकें पढ़ते हैं, ताकि हमारे अंदर एस्पिरेशन का दिया जले और वो अखंड जले। ये बात होती ना, अखंड ज्योति जले। तो अखंड ज्योति क्या है, कैसे जलेगी? अभिप्सा की ज्योति है। और उसमें हम जितना घी तेल डालेंगे, मेधा घृतम ना, संस्कृत घृतम, घृताश्नु कहा गया इंद्र के अश्वों को, घृतम। घृतम क्या है? क्लियर मेंटालिटी। हमारा माइंड इधर उधर उलझने की जगह, शेयर मार्केट की जगह अगर पढ़ता है सही ढंग से, स्वाध्याय पढ़ता नहीं, स्वाध्याय करता है, तो क्या होता है? घृतम इस अभिप्सा में जाता है। और घृतम अगर रेगुलरली जाता है तो वो अभिप्सा अखंड बन जाती है। इसलिए माँ श्री अरविंद को रोज पढ़ना चाहिए, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमन यूनिटी। प्रैक्टिकल चीजें हैं, इट्स नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट बिग थिंग्स। क्यों? उससे हमारे अंदर अभिप्सा जलेगी। अभिप्सा जलेगी, पहला स्टेप होगा तो हम सत्य की ओर जाएंगे। सत्य की ओर जाएंगे, आत्म तत्व को जानेंगे। आत्म तत्व को जानेंगे अपने अंदर, तो दूसरों के अंदर भी पहचानेंगे। और जब ये पहचानेंगे अपने और दूसरों के अंदर वही आत्म तत्व है, तब हम लोग सही मायनों में कहेंगे हम सब एक ही माँ के संतान हैं। तो ब्रदरहुड हमारे लिए सहज हो जाएगा। नहीं तो एक ही माँ की, फिजिकल माँ की संतानें भी झगड़ा करती रहेंगी, क्योंकि हम उस तत्व को नहीं देख रहे हैं। सो दिस इज दी सीक्रेट, ब्रदरहुड इज द की। तो उसको लेकर के श्री अरविंद ने बड़ी सुंदर रचना की है। आज हम लोग केवल उसको टच करेंगे, कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कितनी सारी इस तरह के प्रयास हुए हैं भारतवर्ष में, जगह जगह, मानव एकता को रियलाइज करने के लिए। एक प्रयास हुआ है जो हम लोग हर साल जगन्नाथ रथ, जगन्नाथ रथ में देखिए कई सारे, एक दुर्गा, दुर्गा की प्रतिमा बनती है, मिट्टी कई जगहों से आती है, आपको मालूम है मिट्टी एक और जगह से आनी बहुत आवश्यक है, जिसके बिना वो प्रतिमा पूर्ण नहीं होती। हाँ, वैश्या के घर से। आपने कल सोची कितना सुंदर इसमें सिंबल है, वैश्या के घर से भी मिट्टी आनी चाहिए। दुर्गा में सब समाहित है, एक हो जाती है, वहां जाके शुद्ध हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है, कैसी भी चेतना हो। कितना सुंदर सिंबल है, एक लेवल पे एकता का सिंबल है। नारी चाहे वैश्या क्यों ना हो, पूजनीय है। एक जगह बहुत सुंदर विवेकानंद जी ने तंत्र की डेफिनेशन दी है, तंत्र क्या, और इसी चीज को श्री अरविंद एक अन्य जगह अलग रूप में लिखते हैं, परंतु चूंकि मुझे स्वामी विवेकानंद जी की वाणी याद आ रही है, मैं वो बताता हूं। व्हाट इज तंत्रा? टू सी द सुप्रीम मदर इन एवरी वुमेन इज द हाइएस्ट तंत्रा। द सुप्रीम मदर इन एवरी वुमेन इज द हाइएस्ट तंत्रा। जो आपको सुबह चाय दे रही हैं, जो आपको रात्रि में शयन कक्ष तैयार कर रही हैं, कौन है ये सब? मां भगवती बच्चे की सेवा कर रही हैं। हम बच्चे हैं और हम लोग क्या भाव लेते हैं, हाँ ये तो तुम्हारा फर्ज है। कोई फर्ज वर्ज नहीं है, फर्ज वर्ज करने से प्रॉब्लम है, वो तो फिर बालक का। लेकिन बालक कैसा होता है, मां है, मां ने सुबह चाय दी है, मां कितना ध्यान रख रही है, कोई आवश्यकता नहीं है। वर्ल्ड मदर इस समय ऐसा एक परिचारिका बन गई, एक बहन बन गई छोटी सी, और वो ला करके चाय दे रही है। ये तो मां को शोभा नहीं देता, मां को नहीं करना चाहिए, मुझे मां की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मां आई है इस तरह से। देखिए दृष्टि जब बदलती है तो क्या होता है, आप पत्नी में भी मां को देखोगे। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा ना, जब विवाह होता है तुम एक बच्चे की मां बनोगी या पूरे जगत की मां बनोगी, तो कहती जगन माता, तो उनके चरणों में वो सिर रख के कहते हैं मां। वैश्या, व्हाट डज शी डू? आपके सारे दुख कष्ट पीड़ा को अपने अंदर सोखती है, अपने जीवन को विष से भर रही है। और पुरुष वहां से जाता है रिलैक्स होकर, लाइट होकर के, सारे घर की प्रॉब्लम ये सब उसने अपने अंदर सोख लिया। इट्स विश, नो डाउट अबाउट इट, वो जीवन विष का जीवन है, विष ले लिया अपने अंदर, विषाक्त हो गई। इसीलिए उनको विष कन्या है, दो लेवल पे इसका अर्थ होता था। एक फिजिकल डिजीज भी उनको मैनिफेस्ट होती है नेचुरली, वो सब मनुष्यता का विष अपने अंदर लेती है। लेकिन काम क्या कर रही है, काम वे भी मां का कर रही है। मां क्या करती है, बच्चे का विष अपने अंदर ले लेगी, बच्चे की प्रॉब्लम ले लेगी, कांटा लगाए तो सब कुछ अपने अंदर ले लेगी, वो भी मां है नेचुरली। इस दृष्टि से हम देखेंगे तो उनके साथ ऐसा कुछ भी कर्म किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन मूल चीज ये कि दृष्टि ये होनी चाहिए, नहीं कि वो वैश्य है, ओफ वो भी मां है। देखिए कितनी सुंदर एक सिंबल है, दुर्गा पूजा हर साल होती है ना, अगर हम लोग बच्चों को ये स्टोरी बताएं दुर्गा पूजा के ठीक पहले, दुर्गा पूजा का अर्थ ये है, ये नहीं कि वहां ढोल पीटा महिषासुर के लिए स्टॉल लगा दिया खाने का, सारे महिषासुर दुनिया भर के आ जाते हैं गोलगप्पों से आकर्षित होकर, हाउ स्टूपिड इट इज। बट मां के अंदर सब एक है, कितनी पावरफुल स्टोरी है सती की स्टोरी, दुर्गा की स्टोरी। ऐसी एक स्टोरी है जगन्नाथ का रथ, कहानी तो आपको पता होगी इसकी शायद, कैसे वो कास्ट तैरता हुआ आता है, और ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ के वहां पे श्री कृष्ण के रिलिक्स हैं। उन्होंने मृत्यु के समय जिस जरा नाम के व्यक्ति को सौंपा था जो कुछ उनके पास धरोहर थी, वह उसको उसी के वंशज उसको ट्रांसमिट करते रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। और पूरी स्टोरी सिंबॉलिक है कि जब वो बना रहे होते हैं, कहा जाता है विश्वकर्मा स्वयं उस मूर्ति को गढ़ते हैं, और ये कहा गया कि राजा को कि तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे, डिस्टर्ब किया, देखिए स्टोरी कितनी सिंबॉलिक है, डिस्टर्ब किया तो ये मूर्ति आधी अधूरी रह जाएगी, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अब दिन महीने साल राजा छटपट, ये कर क्या रहा है अंदर, हो क्या रहा है, भोजन तो भिजवा देते हैं, सब सुविधा है, लेकिन मूर्ति बन रही है कि नहीं बन रही है। एक दिन बहुत व्यग्र होकर खोल देता है तो चले जाते हैं। तो ये मूर्ति में देखिए सिंबल अरूप रूप है उनका, अगर आप मूर्ति को देखें तो विचित्र सी लगती है, क्यों, आधी अधूरी है। संकेत, अभी जगन्नाथ का रथ वास्तव में बनना बाकी है, क्यों नहीं बन पा रहा, मनुष्य अधीर है। राजा कितना अधीर हो उठा, इंपेशेंट है, अरे बन क्यों नहीं रहा, बन क्यों नहीं रहा। श्री अरविंद ने कहा है सुपरामेंटल वर्ल्ड, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, कब आएगा, कब आएगा। ये अधीरता और लंबा कर देती है पथ को, माता जी ये बार बार कहती है, इंपेशेंस मेक्स द पाथ लॉन्गर। इंपेशेंस का अर्थ क्या है, ट्रस्ट और सरेंडर का अभाव। तो वो जहां नहीं है वहां इंपेशेंस है, जहां इंपेशेंस है काम बिगड़ता है, चाहे वो घर में हो या जल्दबाजी में आप करेंगे तो बिगड़ेगा। तो स्टोरी में पहले ये, फिर अब जो भी है जैसा भी बना संकेत, अब हर साल क्या होता है जगन्नाथ रथ यात्रा में, भगवान बाहर आते हैं लोगों के बीच में, उल्टा है, नॉर्मली लोग मंदिर में जाते हैं, है ना, भगवान को दर्शन करने के लिए। वो एक मूवमेंट है कि हर व्यक्ति मंदिर में जाकर अकेला खड़ा है, ये एक एकत्व से भरे समाज का ये स्टोरी है जगन्नाथ का रथ। तो भगवान को हम ढूंढते हैं, हर व्यक्ति अपना अपना अंदर में ढूंढता है, मोनेस्ट्री में ढूंढे, आश्रम में ढूंढे, वो तो अपनी अपनी उसकी अपनी कहानी है। मंदिर में गए, देखा हमारा अपना भगवान साक्षात्कार हुआ, हम बाहर आ गए, जो मिला नहीं मिला, जो सुख दुख हो। लेकिन कभी कभी भगवान बाहर आते हैं सृष्टि के बीचों बीच, और जब वे बाहर आते हैं तो सब अलग अलग भिन्न दिखने वाले लोग, उनकी दृष्टि ठिठक कर केवल उनकी ओर हो जाती है, क्यों, क्योंकि जगन्नाथ आ गए। ऑफ कोर्स कुछ मूर्ख कुछ और ढंग से भी लेते हैं, टैगोर की कविता है जगन्नाथ के रथ पर, कि रथ जा रहा है और सब प्रणाम कर रहे हैं। तो टैगोर लिखते हैं, पथ जाने आमी देव, पथ कह रहा है मुझे प्रणाम कर रहे हैं सब मेरे ऊपर गिर गिर के, रथ जाने आमी देव, रथ कह रहा है अरे मुझे प्रणाम कर रहे हैं, देव जाने आमी देव, मूर्ति सोच रही है मैं देवता हूं। और लास्ट में लिखते हैं, वो बात हो रही थी ना हाइको की, ये इंडियन हाइको है, हासे अंतर्यामी अंतर्यामी हंस रहा है, रथ सोच रहा है मुझे प्रणाम कर रहे हैं, पथ सोच रहा है मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मूर्ति सोच रही है मुझे प्रणाम कर रहे हैं, जो अंतर्यामी हंस रहा है कि देखो मैं निकला हूं देखने, ये लोग किस खेल में फिर से यही सोच रहा है कि मुझे प्रणाम कर रहा है, किसको कौन प्रणाम कर रहा है। तो दैट इज द, और उसमें जो राजा होता है वो झाड़ू लगाता है, खींचता है, सब लोग मिल करके खींचते हैं, और महाप्रसाद बनता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महालक्ष्मी स्वयं उस प्रसाद को बनाती है। अब सिंबल ये जगन्नाथ का रथ, ये वास्तव में एक आदर्श समाज का एक संकेत है, एक समाज जो एकता के आधार पर हो, एक समाज जिसमें विश्व बंधुत्व हो, एक समाज जिसमें सब समान रूप से हैं, उसमें यह नहीं होता कि अच्छा इसकी लाइन अलग इसकी लाइन अलग। अनफॉर्चुनेटली अब देखिए मनुष्य ने क्या किया है, मुझे तो बड़ा दुख हुआ, जगन्नाथ मंदिर में गया तो वहां लिखा है कि फॉरेनर्स एंड दिस आर नॉट अलाउड, अनफॉर्चुनेट चीज है ये। वो कालांतर में उसका जो डीजेनरेशन हुआ, पर ओरिजिनल ट्रूथ कितना सुंदर है कि भगवान बाहर निकलते हैं, जब भगवान बाहर आते हैं बाहरी चेतना में आ जाते हैं, ये क्या है, मां श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं, वही तो हिरण्यकश्यप की स्टोरी की, भगवान जड़ तत्व के अंदर से जब बाहर आएंगे तब समस्याओं की समाधान हो जाएगा। जो कल अमित बड़े सुंदर दिखा रहे थे नोटबुक में, तो मुझे बार बार ये कहानी याद आ रही थी, मैं सोच रहा था मैं बोलूं, मैंने नहीं बोला, तो अभी बोल देता हूं, नोटबुक जो है तुम्हारे हाथ में दिखाई दो, ना ये नोटबुक दिखाई, बोला देखो भैया कितना अच्छा है, इसमें लिखा है एसेंट और नीचे क्या लिखा है, वेयर नॉलेज सोर्स हायर एंड हायर। तो कहा ये देखो एक साधारण सी नोटबुक में भी ये सब चीजें आने लगी हैं। एक रोज, रोज का नाम डिवाइन, डिवाइन मिल रहा है, डिवाइन मिल रहा है। बाहर की ये क्या है, ये हिरण्यकश्यप की स्टोरी है, ये बाहर की चेतना। शायद व्यक्ति को खुद नहीं मालूम कि क्या लिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज बाहर आ गई। यही तो जगन्नाथ है जब बाहर आते हैं, और जब ये बाहर आते हैं तो फिर ये सब कुछ अपने आप व्यवस्थित होने लगता है, लाइक ए चुंबक। लेकिन जैसी की बात हुई कि जगन्नाथ चूंकि प्रतिमा अभी अपूर्ण है, इसलिए वो ट्रूथ रियलाइज नहीं हुआ। यही ट्रूथ एक और स्टोरी में आता है, इसको विल रीड टुमारो। एक और स्टोरी आती है, माताजी से किसी ने, नाउ यू नो इज द टाइम फॉर स्टोरीज, माताजी से किसी ने पूछा, माताजी के पास्ट इनकारनेशंस में एक उनका इनकारनेशंस था रानी हात्शेपुट। हात्शेपुट ये मिश्र देश की फराओ फैमिली से एक ऐसी अद्भुत रानी थी जिसने इजिप्ट में कई सारे रिवॉल्यूशनरी चेंजेस किए। एक तो वो रानी होकर फराओ थी, राजा बनी, क्योंकि वो यंग एज में जो राजा था उसकी डेथ हो गई और दूसरा कोई आए उसके पहले एक पीरियड था, तो वो राजा बनी। उन्होंने कई रिवॉल्यूशनरी चेंजेस किए इजिप्ट में। एक चीज जो उन्होंने की थी, उसके पहले इजिप्ट में एनिमल्स की वर्शिप होती थी। आप देखें कई सारे उनके जो गॉड्स हैं, होरस, ये सब एनिमल फॉर्म में है। तो उन्होंने इन सब की जगह सूर्य, सन की वर्शिप प्रारंभ किया, और नाम होता था रा, गॉड का नाम था रा, सूर्य। और उन्होंने एक सूर्य का मंदिर बनाया, और सूर्य के मंदिर में जो चार्टर है कि सूर्य का मंदिर क्या है, यहां जो आएंगे वो क्या करेंगे, वो ऑरोविल के चार्टर से बहुत मिलता जुलता है। अब जब लोगों को पता था कि, पता चला कि मां ही रानी हात्शेपुट थी, तो मां से पूछते कि मां आपने तब भी ये काम किया था, बोलती हां। तो मां लेकिन ये तो फिर अब मंदिर तो समाप्त हो गया, मतलब अब अवशेष बचे हैं, तो आपको मालूम था कि ये काम पूरा नहीं होगा। मां कहती हां ये मालूम था मुझे, तो आपने क्यों किया। ये बड़ा सुंदर लेसन है मां का उत्तर। हम लोग जो फेल्योर से डरते हैं, फेल्योर से घबराते हैं, श्री अरविंद देखिए कहते हैं हाफ ए डजन चीजों ने संसार को बदला है, और जिन चीजों ने संसार को बदला है उनमें से हाफ ए डजन फेल्योर्स मानी गई थी अपने समय में, क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन फॉर एग्जाम्पल। तो उसी प्रकार से मां कहती हैं उस समय मनुष्य इसके लिए तैयार नहीं था, किंतु फिर भी मनुष्य के मन के अंदर यह स्मृति चिन्ह के रूप में अंकित रहे, ताकि व्यक्ति भूल ना जाए कि यह हमें एक समय आएगा जब हमें यह चीज करनी है, इसलिए मैंने उसका निर्माण किया था, ताकि मनुष्य की स्मृति में यह सत्य सजोया रहे। सत्य क्या है, एकता का सत्य, सुप्रामेंटल ट्रुथ में स्मृति में उन्होंने अंकित कर दिया, समय समय पर याद दिलाया। जगन्नाथ का रथ क्या है, उसी स्मृति में अंकित कर दिया। सत्य की कहानी क्या है, उसी स्मृति चिन्ह पटल पे अंकित कर दिया एक सत्य को। रामराज की परिकल्पना क्या है, स्मृति के अंदर उस रामराज तो स्थापित नहीं हो सका, अगर हम रियली देखें तो राम राज्य एक परिकल्पना के रूप में रह गया। क्यों, धरती ने स्वीकार ही नहीं किया अर्थ नेचर और डिवाइन पुरुष के साथ होने के लिए। स्वयं अयोध्या में रावण शत्रु नहीं था, रावण की शत्रुता से ज्यादा भयानक राम जी के राज्य में उनके अपने लोगों की शत्रुता थी, है ना। ये स्टोरी देखिए, रावण ने तो क्या किया, वो ले गया, युद्ध हुआ, समाप्त हो गए, लेकिन अपने लोगों की शत्रुता बड़ी भयानक होती है। श्री अरविंद कहते हैं कि जब डिसाइपल लोग मूवमेंट कोई ज्वाइन कर लेते हैं और उसको अंदर से नष्ट कर देते हैं, वो बड़ा भयानक है। और वो कहते हैं कि ऐसा धर्मों में हुआ है, लोग इसीलिए श्री अरविंद प्रोपेगेंडा के बिल्कुल खिलाफ थे कि और डिसाइपल लाओ और मेरे लिए शिष्य लाओ, बिल्कुल खिलाफ थे इसके, कहा ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये तरीका है ही नहीं। तो वो ज्वाइन करके नष्ट कर देते हैं। तो राम जी के संभावना को नष्ट किसने किया, देखिए कैसा पैराडॉक्स है रामायण में। रावण ने नहीं किया, कर नहीं पाया, रावण विजिबल शत्रु था, लेकिन धोबी ऐसा शत्रु था जिसको वो मार नहीं सकते थे। उसके मन में शंका आ गई। अग्नि परीक्षा के बाद भी क्या शंका है? क्या अर्थ नेचर इतना प्योरीफाई हो सकती है कि वो डिवाइन से एक हो जाए? सीता तो अर्थ से निकली है ना, अर्थ नेचर है। अर्थ नेचर के अंदर सभी ऋषि मुनियों की एंग्विश, मनुष्यता के चीख पुकार को लेकर जन्मी है। तो रावण को तो नष्ट कर दिया उन्होंने, लेकिन धोबी कहता है ये संभव है? अग्नि परीक्षा सुना था, हमने तो देखी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? डाउट एंड इट डिस्ट्रॉयज द पॉसिबिलिटी। देखिए स्टोरी के अंदर एक ट्रेजिक टच तो दिया है, यही तो ट्रेजेडी हर बार होती है। राम राज्य स्थापित करने आते हैं जो एक आदर्श समाज है। राम राज्य इज द फर्स्ट सोशलिज्म। हम लोग सोचते हैं, पढ़ते हैं किताबों में इतिहास की सोशलिज्म फला फला मार्क्स या कोई और उसने दिया, कितनी मिथ्या चीजें हैं। उसने तो आसुरिक सोशलिज्म दिया। भारतवर्ष में कितनी सुंदर सोशलिज्म है, तुलसीदास की कितनी सुंदर लाइन है, गणिका जामिल ब्याद गीद गजाद फल तारे गना। भगवान के किनको किनको उन्होंने तारा, उसकी कैटेगरी में भक्तों में कौन कौन आता है? शबरी, गिरी हुई जाति की, निषाद राज, केवल उन्होंने भरत लक्ष्मण हनुमान उनको नहीं तारा, गणिका एक जो वैश्या, अजामिल जैसा बुचर, ब्याध गीध जटायु संपाति, गज चीख पुकार करता है, भालू बंदर, ये सोशलिज्म है और ये डिवाइन सोशलिज्म है। लेकिन फिर भी मनुष्य तैयार नहीं है, इसलिए वो भी अंत में क्यों तैयार नहीं है? प्योरिफाइड अर्थ नेचर चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट। सेंटर्ड अराउंड द डिवाइन चाहिए। अगर आप सेंटर्ड अराउंड द डिवाइन नहीं है तो वो सुग्रीव भी है, बाली भी है, दोनों पॉसिबिलिटी है। रामायण पहली स्टोरी है इवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन की जो अंकित है मानस पटल में। पहले भी स्टोरीज हैं, और वैसे इन ऑल फेयरनेस ऐसी स्टोरी ग्रीक मिथोलॉजी में है, मेसोपोटामिया की मिथोलॉजी में है, नाम में ध्यान नहीं आ रहा, बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज हैं, पर ज़्यादातर अब वो वेल नोन नहीं है और बहुत सीमित है। पर रामायण की स्टोरी में क्या है, अगर हम देखें, इज एफर्ट टूवर्ड्स ए आइडियल ह्यूमैनिटी, जिसको राम राज्य कहा गया। लेकिन आइडियल ह्यूमैनिटी की समस्या क्या है? पहली समस्या यह है कि बाली विश्वास नहीं करता, वो क्या विश्वास करता है? माइट इज राइट, देयरफॉर बाली हैज टू गो। दोनों बंदर हैं, एक तैयार है इंटेग्रेट होने के लिए हायर ट्रुथ से, एक तैयार नहीं है। और माता जी कहती हैं ये आगत काल में होगा। मां कहती हैं कि एक मनुष्यता है जो पास्ट से चिपकी हुई है, पशुत्व से चिपकी हुई है, राक्षस की तरह उसमें विकृतियां हैं, वो कोलैप्स कर जाएगी। और एक है जो ऊपर उठने के लिए तत्पर है, और वो न्यू फोर्सेस के साथ यूनाइट होकर एक नए समाज, नॉस्टिक कम्युनिटी की रचना करेंगे। यही चीज रामायण में होती है। एक वानर है जो तैयार नहीं है इंटेग्रेट होने के लिए, क्योंकि जंगल के विधान माइट इज राइट को ही वो धर्म मानता है, उसको नष्ट होना है। राक्षसों में भी एक राक्षस है जो माइट इज राइट मानता है, उसको नष्ट होना है, और एक राक्षस है जो समर्पण, विभीषण भी राक्षस है, तो जो समर्पण करता है नई चेतना के प्रति वो आगे चला जाता है, और जो नहीं करता है वो नष्ट हो जाता है। सो ये उथल पुथल हम आधुनिक समाज में भी देख रहे हैं, और ये होगा, ये नेचुरल है। यही स्टोरी हम देखते हैं कि कृष्ण की कहानी में भी, एक आदर्श समाज की रचना, कंस को हटाकर राजा उग्रसेन को अपना राज्य दिलाना, महाभारत का युद्ध ताकि अश्वमेध राज, ये सब स्टोरी जो है एक आदर्श समाज के लिए, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, वो तो एक आराम से रिजॉल्व हो सकती थी, ताकि इस धरती पर एक आदर्श सभ्यता जन्म ले, और जन्म लेती है। श्री कृष्ण के कर्म में से एक जो फल स्वरूप एक बड़ी सुंदर चीज जो हुई वो था भारत राष्ट्र का जन्म हुआ। ये उनका एक ठोस कर्म, हम लोग महाभारत वृंदावन ये सब तो जानते हैं. इट वॉज बिकॉज ऑफ श्री कृष्णाज एफर्ट्स. अब उनके जीवन को देखिए, केवल एक क्षण के लिए भूल जाइए कि वो माने भगवान की तरह सब दिव्यता, एक जस्ट एज ए ह्यूमन लाइफ आप देखिए, तो आपको बिल्कुल अजीब लगेगा कि एक नई चेतना को लेकर जन्मे हैं, क्या क्या स्वप्न लेकर आए हैं, और जन्म से उनके पीछे कोई राक्षस कोई असुर पड़ा हुआ है मारने के लिए. हम लोग तो उसको आनंद के रूप में मनाते हैं, बट रियली इट इज सच ए डिस्ट्रेसिंग लाइफ. यानी ना उनको जन्म के पहले से, ना उनको जन्म के समय चैन लेने दिया जा रहा है, और जहां गए वहां भी खोज पड़ताल शुरू हो रही है. संकेत लें या बाहर से स्टोरी लें, एवरीबडी इज आफ्टर हिम, मिसअंडरस्टैंड्स हिम, अनेकों मिसअंडरस्टैंडिंग्स. अरे ये वो भूरिश्रवा कहते हैं ना, ये इन्होंने सबको भड़काया है, सबको इन्होंने गलत रास्ता दिखाया है, ये कैसे आदर्श हो सकते हैं. महाभारत के युद्ध में आती है ना कहानी, उसके पहले भी आती है राजसूय यज्ञ में, हाउ ही कैन बी ऑन द मेन लीडर, इनको यज्ञ का मुख्य भाग कैसे दिया जाए. शिशुपाल भी यही करता है, ये सब कुछ. और वो उनका एक ही उद्देश्य है कि इस भारत भूखंड को एक कैसे किया जाए. तो जितने भी राजा, वो कालियावन, तो खैर वो फॉरेनर था, जरासंध, शिशुपाल, इन सबको वो सम हाउ और दी अदर ही मैनेजेस टू लिक्विडेट देम. और जो बाकी अपने कुल के बचे और बाकी बचे उनको लिक्विडेट कर देते हैं. और अब युधिष्ठिर का एक क्षत्रराज है, वो आदर्श एक, एंड ही एक्सटेंड्स थ्रू अश्वमेध यज्ञ सारे उसको एक बना करके पहली बार एक ऐसा राज्य स्थापित होता है आर्यवर्त, जिसके अंदर एक आदर्श समाज काफी समय तक चलता है. श्री अरविंद लिखते हैं, श्री कृष्ण द्वारा यह स्थापित किया हुआ राज्य फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, थाउजेंड और टू थाउजेंड, इट कंटिन्यूज नियरली 2000 इयर्स अंडर एबल हैंड्स ऑफ परीक्षित, फिर अजात शत्रु इत्यादि बहुत सारे नाम हैं जिन राजाओं ने उस परंपरा को, उस ट्रुथ को, नॉट परंपरा को, उस ट्रुथ को मैनिफेस्ट रखा. लेकिन वो भी पूरी मनुष्यता उसके लिए तैयार नहीं, इसीलिए श्री कृष्ण को द्वारका डुबोनी पड़ी. लेकिन देखिए, लंबे समय तक श्री कृष्ण ने इस चीज को अपने योग बल से, तपोबल से एक आदर्श समाज को स्थापित करके खींच के ले आए. कहां से उसका डिजेनरेशन शुरू हुआ, जहां से प्रारंभ हुआ, जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य कर्मकांड शुरू हुआ, फिर बुद्ध आए कर्मकांड को तोड़ने के लिए, वहां से प्रारंभ हुआ. और वो श्री कृष्ण की लीला थी कि नहीं, अब उनको पता है कि और 2000 वर्ष बाद एक ग्रेटर ट्रूथ आने वाला है, मैं ही लाऊंगा. तो उन्होंने उस चीज को वापस अपने में एब्जॉर्व किया. बट लुक एट द वर्क, कैन वी इमेजिन कि श्री कृष्ण दिन रात किस तरह से, वो अगर ह्यूमन टर्म्स में बोले, चिंतित होंगे कि हाउ टू क्रिएट यूनिटी बेस्ड ऑन ट्रूथ. एक यूनिटी है जो फॉल्सहुड पर बेस्ड होती है, जैसे लोग कहते हैं ब्रिटेन ने सबको यूनाइट किया, ये एक असुर की यूनिटी है कि ब्रिटेन, ब्रिटिश आए तो हम सब यूनाइटेड हुए, ये सच नहीं है, वो यूनिटी नहीं है, वो मिथ्यात्व के आधार पर यूनिटी है. जैसे राक्षस साम्राज्य बढ़ा लेता है, वो यूनिटी नहीं है. अलेक्जेंडर ने वर्ल्ड को यूनाइट नहीं किया, दैट इज नॉट यूनिटी, वो एकत्व नहीं. ये दोनों, राक्षस का एकत्व अलग होता है, उसमें मानव अहंकार का पोषण होता है, या तो एक व्यक्ति का या एक समूह का, जिसको वो सुपीरियर डिक्लेयर कर देता है और उसका पोषण होता है, और उसका पोषण होता है तो बाकी सबका शोषण होता है. और एक दूसरी यूनिटी है जो देवत्व की यूनिटी है, और देवत्व की यूनिटी में किसी का शोषण नहीं होता, सबका पोषण होता है, सब में परस्परता होती है. छोटी सी स्टोरी जिसे हम लोग ये सत्र समाप्त करेंगे. स्टोरी है कि देवता और असुर दोनों आपस में, दोनों की माताएं कहती, ये असुरों के साथ ये पक्षपात करते हैं भगवान, ये गलत बात है, ये देखो हम लोग के साथ तो क्या दे देते हैं, नरक में जाओ, यहां रहो, वहां रहो, देवताओं को स्वर्ग दिया हुआ है. तो भगवान कहते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबको समान रूप से देखता हूं, तुम लोग समझते नहीं हो. क्या नहीं समझते हैं आप, दिखाइए हमको कैसे समान रूप से देखते हैं. तो कहते ठीक है, तो दावत पे बुलाया जाता है, सबको बुलाया जाता है, देवता भी आते हैं, असुर भी आते हैं, सबको बड़े सुंदर सुंदर पकवान परोसे जाते हैं. खाने के पहले, इस बार जो नया महाभारत है उसमें ये स्टोरी उन्होंने मॉडिफाई करके दिखा दी थी पांडव और कौरव में, पर ये ओरिजिनल स्टोरी इस सेंस में है। जब खाना स्टार्ट करने आ, इतने अच्छे से पकवान आ गए, कहते ठहरो ठहरो एक गेम खेलेंगे, भगवान को भी गेम खेलने का मजा आता है खाने के पहले, कहते क्या गेम है, सबके हाथों को ये एल्बो को बांध देते हैं जिसे सीधा रहेगा, ये मोड़ नहीं सकते आप, कहते अब खाना खाओ। तो असुर पकड़ रहे हैं, उछाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, खाए नहीं, गुस्सा हो रहे हैं, ये भगवान ने क्या किया हमारे साथ, अन्याय कर रहे हैं, ये देखो फिर कुछ ट्रिक किया है। देवता कह रहे भगवान ने किया है, कुछ तो इसमें बात होगी, ये गेम है, वो क्यों चाहेंगे कि हम भोजन नहीं करें, कुछ ट्रिक है, ट्रिक है, ट्रिक है। देन दे फाइंड वो इसका एक सोल्यूशन है, तो एक दूसरे को खिला रहे हैं। तो ये जो बात आपने सुबह में कही थी रतनपुरा जी, कि आपके पौधों की सुगंध दूसरे घर में जा रही थी, तो मुझे उस समय एक चित्र दिमाग में आ रहा था, दूसरों के पौधों की गंध भी तो आपके पास आ रही है। आई एम जस्ट जोकिंग। ये भी तो सत्य है कि बहुत कुछ हम लोग देते हैं जिसका हम लोगों को फल नहीं मिलता, जैसे हम लोग कहते हैं देखो क्या फायदा, लेकिन बहुत कुछ हमें मिलता है जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया होता। एक स्टोरी है, जब कोई लेडी ट्रैफिक लाइट पर, उसने क्रॉस नहीं किया था, ठीक जगह पर रोक दी गाड़ी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले ने आके उसको फाइन किया, उसने चुपचाप निकाल करके पैसे दे दिए। तो उसके साथ जो दूसरी महिला बैठी थी कहती ये क्या, तुमने तो गलत नहीं किया था, तुमने इसको क्यों दिया, तुमने तो झगड़ा करना चाहिए था। कहती नहीं नहीं एक्चुअली मेरे मन में एक दूसरा विचार आ गया उस समय। कहा क्या विचार आया। कहा मैं कई बार ऐसे कर चुकी हूं कि ट्रैफिक लाइट को मैंने जंप किया है लेकिन किसी ने मुझे पकड़ा नहीं है। तो मुझे एन वक्त पे ये विचार आ गया कि कितनी बार मुझे किसी ने पकड़ा नहीं है, आज पकड़ लिया तो कोई बात नहीं, आज तो मैंने गलती नहीं की थी, पर कितनी बार मैंने गलती की थी तब मुझे दंडित नहीं होना पड़ा, आज बिना गलती किए दंड मिला तो समझती हूं कि हिसाब किताब सब बराबर हो गया। ये भी एक सोच है, एक दृष्टि है जो हमें परस्परता की ओर ले जाती है। आज हम लोग रुकेंगे, कल फिर इस कथा को आगे बढ़ाएंगे।